हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। अभी तक हमने पढ़ा था कि साधन भक्ति के 64 अंग होते हैं और ये 64 अंग जो है उसमें पांच सबसे महत्वपूर्ण है और ये भक्ति जो है 64 अंगों वाली उसमें कहीं पर भी ज्ञान मार्ग या वर्णाश्रम धर्म या वैराग्य इन सब चीजों को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि भक्ति वास्तव में इन सब पर आधारित नहीं होती है। ये थोड़ा शुरुआत में सबॉर्डिनेट सहायक कर सकते हैं। 64 अंग जो है नवदा भक्ति का विस्तार है, अर्थात उसी नवदा भक्ति नौ अंग जो है भक्ति के उसको अधिक मजबूत, अधिक स्थिर बनाने के लिए 64 अंग जो है वो हमें सहायता करते हैं। ये हुआ अभी तक जो डिस्कशन वो है साधन भक्ति का। अब हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले दो चैप्टर्स में राग भक्ति किस तरह से होती है, ये भी साधन भक्ति के अंतर्गत आता है, रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। तो रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति वास्तव में ये राग से उत्पन्न होता है, जिसका हम शुरुआत में वर्णन हुआ किया था कि राग भक्ति में स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा या मोटिवेशन होता है वह हृदय से होता है। साधन भक्ति में गुरु के आदेश और शास्त्र के आज्ञा ये हमारा मोटिवेशन होता है, अर्थात इन इनके कहने के बाद हम भक्ति के अंगों को 64 अंगों का पालन करते हैं। लेकिन यही 64 अंगों का पालन जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाह्य आदेश के पालन के बदले स्वयं अपने हृदय से प्रेरित होकर के जब वो करे, तब फिर वो धीरे 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 राग मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है साधक का कि वो विधि साधन भक्ति के बदले रागानुगा साधन भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये अवस्था बहुत उत्तम प्रकार की अवस्था मानी जाती है भक्ति में। हर एक भक्त को चाहिए कि रागानुगा भक्ति की ओर अपने आप को आगे बढ़ाए और इस विजन से आगे काम करे, इस दृष्टिकोण से के अभी मेरी उम्र 100 है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैं भक्ति में ज्यादा स्थिर बन जाऊं और आगे जाकर के ये राग मार्ग की भक्ति उसमें मैं अपने आप को स्थिर कर पाऊं। तो हम आपसे अभी दो चैप्टर्स में ही चर्चा करेंगे कि ये राग भक्ति होती कैसी है, कौन उसके लिए क्वालिफाइड होता है और ये किस तरह से इसका आचरण किया जाता है, रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो रागानुगा साधना ये वृंदावन के भगवान के बहुत सारे जो भक्त है ब्रजवासी भक्त, उस ब्रजवासी भक्त के मूड को या उनके भाव को हमारी साधना भक्ति में कल्टीवेट किया जाता है और हम उनका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार का जो भक्ति होता है वो वृंदावन के शाश्वत जो निवासी है ब्रज भक्ति के, वृंदावन के रहने वाले, उनके प्रति आकर्षण, उनके उनकी भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण, वो रागानुगा भक्ति को रागानुगा साधन भक्ति माना जाता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन रागानुगा जो भक्ति है उसके उसका स्पष्ट वृंदावन के वासियों के संबंध में उसका उपयोग करते हैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्यमृत में श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य चैतन्यमृत में भक्त रसामृत के डायरेक्ट श्लोकों का उच्चारण अनुवाद किया है, रागात्मिका और रागानुगा। ये दो को पहले एक बार समझना आवश्यक है। इन शॉर्ट, रागात्मिका उसको उस भक्ति को कहते हैं कि जिसमें जो साधक या भक्त जो होता है वो सिद्धि अवस्था में भगवान की सनातन सेवा में लगा हुआ है, प्रेम राग मार्ग की सेवा में जुड़ा हुआ है, जैसे कि नंद महाराज, यशोदा माता और ब्रजवासी भक्त, वो डायरेक्ट कृष्ण के साथ संबंधित है। अर्थात समझ लो यशोदा माता है वो कृष्ण के साथ संबंधित है कि वो उनकी माता है, और वो होता है रागात्मिका भक्ति। और रागानुगा भक्ति जो होता है वो इन भक्तों को, जैसे यशोदा माता एक भक्त है, इन भक्तों का सेवा करना, उनका असिस्टेंट के रूप में उनको अनुसरण करना, उनके प्रति हमारी भक्ति को स्थिर करना यशोदा माता के प्रति, और उस उनकी भक्ति से सीख लेकर के हम अपनी भक्ति का पालन करें और उन्हें हमारा आदर्श मानकर चले और उन्हीं के चरणों पे चले। तो वो अनुगा, अनुगा का अर्थ होता है फॉलो करना, अनुसरण करना। तो राग आत्मिका वास्तव में सिद्ध अवस्था का माना जाता है स्थिति, और रागानुगा जो है वो उनके चरणों को अनुसरण करने के लिए जो भक्ति का मार्ग अपनाया जाता है उसको रागानुगा कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज। लेट अस टॉक अबाउट चैतन्य चरितामृत। विरजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिसौ जनादिषु रागात्मिकम अनुसृष्ट यच यस रागानुगोच्यते रागानुगा उच्यते। Devotion service and spontaneous love is really expressed and manifested by the inhabitants of Vrindavan. भगवान की राग भक्ति का जो प्रेम है, रागानुगा भक्ति, वो वृंदावन वासियों के द्वारा अलग अलग रूप से प्रकट किए गए हैं। राग भक्ति devotional service that accords with their devotional service called रागानुगा भक्ति। ये डायरेक्ट श्लोक है उसका एनोडी का, कि भक्ति जब उनके अनुसरण में जब की जाती है भगवान के भक्तों के, तो वो रागानुगा माना जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन।
हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन यू जस्ट रिपीट दिस? अभी आपने बोला कि जो वृंदावन वासी को फॉलो करते हैं,
उनको फॉलो,
पहले आपने जो बताया वो भक्त रागानुगा भक्त और रागात्मिक भक्त के बारे में बताया, अभी रागानुगा भक्ति और रागानुगा अरे रागात्मिक भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, मतलब भक्त और भक्ति दोनों की बात कर रहे हैं ना आप?
हाँ, भक्त और भक्ति, लेकिन यह समझ लो कि यशोदा माता है तो वो रागात्मिका भक्ति करने वाले रागात्मिका भक्त है।
ओके, एग्जाम्पल ऑफ यशोदा माता इज रागात्मिका भक्त।
यस, और जो
उनको अनुसरण करते हैं
यशोदा माता को, यस, जो नंद है, यशोदा है,
फिर अपनी जो भक्ति बढ़ाते हैं दोजार रागानुगा भक्त।
या दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम राग। उत्तम भक्ति के तीन प्रकार है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। उसमें साधन भक्ति के दो प्रकार है, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, जिसके हमने पहले चर्चा की थी आगे, और इसी के अनुरक्षण अनुसंधान में इसके संबंध में भक्ति रसामृत के इन श्लोकों का हम उच्चारण कर रहे, और चैतन्य चरितामृत में भी डायरेक्ट इसका अर्थ है। रागात्मिका भक्ति मुखिया ब्रजवासी जने तार अनुगत भक्ति रागानुगा नाम है। रागात्मिका भक्ति जो होता है वो मुखिया ब्रजवासी जन है, वो डायरेक्टली ब्रजवासी में पाई जाती है, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन तार अनुगत उनके जो अनुयायी उनको शरण उनके चरणों पर चलने वाले, तार अनुगत भक्ति रागानुगा नाम है। उन लोगों की जो भक्ति होती है उसको रागानुग भक्ति माना जाता है, रागानुग नाम है। अभी वो जो हमने श्लोक बताया, विराज विराज अंतिम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जनादिशो जनादिशो रागात्मिकाम अनुसृष्टा यासा रागानु गोच्यते, रागानु का भक्ति, रागात्मिक भक्ति, दैट वी हैव डिफाइंड।
प्रभु जी एक क्वेरी है, जब यशोदा माता डायरेक्टली सेवा करते वो भक्ति करे ये उद्देश्य से नहीं कर रही होती ना, वो तो अपना पुत्र समझ के कर रही होती ना, वो भाव से करती है ना, तो वाई डू यू से इट एज रागात्मिका भक्ति, मतलब डायरेक्ट संबंध है भगवान से वो बात सही है, बट भक्ति भाव से नहीं करती है ना, वो प्रेम भाव से करती है ना।
हाउ विल यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन भक्ति एंड लव?
ओके, भक्ति एंड लव मतलब वो स्पॉन्टेनियसली वो कर रही है और नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या ऐसे नहीं।
भक्ति भक्ति डजंट मीन दैट ओनली फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशन इज भक्ति। भक्ति हैज डिवोशनल सर्विस, जैसा हमने बताया उत्तम भक्ति की डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। उत्तम भक्ति के तीन प्रकार है, एक है साधन भक्ति, एक है भाव भक्ति और एक है प्रेम भक्ति। तो यशोदा माता जो है वो प्रेम भक्ति में है, वो डायरेक्ट कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, भगवान के साथ प्रेम भक्ति में। और उनकी जो भक्ति होती है तो रागन रागात्मिका साधन भक्ति में भी हो सकता है, भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति तीनों में रागात्मिका हो सकता है। लेकिन रागात्मिका भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उन लोग को नियमों की परवाह नहीं रहती, फिर भी वो साधनों का उपयोग करते हैं। लेकिन भाव भक्ति और प्रेम भक्ति वाले जो भक्त होते हैं उनको किसी प्रकार के जो 64 अंग है उसको उससे बाध्य नहीं है, वो संपूर्ण रूप से अपने प्रेम पर निर्भर करते हैं। सो इसलिए यशोदा माता इवन दो सी इज ऑन प्रेम भक्ति लेवल बट सी इज डायरेक्टली कनेक्टेड, भगवान के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है राग आत्मिका भक्ति के माध्यम से, अर्थात वो रागात्मिका प्रकार है, वो वैदी प्रकार में नहीं आता है। इट्स नॉट इन साधना वैदी साधना, इज रागन रागात्मिका भक्ति माना जाता है, रागात्मिका प्रेम भक्ति। Is that getting clear?
Yeah. Now it is very much clear.
Yeah. Okay. So, Raganuga Bhakti and Ragatmika Bhakti that we have discussed. Now the definition of Ragatmika Bhakti. Ishte Swarasagi Raga Parama Vishtata Bhavet तन्मय या भवेद भक्ति शास्त्र रागात्मिकोदिता। When one becomes attached to the Supreme Person of God according to someone's natural inclination, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से आसक्त होता है, अनुरक्त होता है भगवान से, वो अपने स्वाभाविक प्रेम के वश और वो निरंतर कृष्ण भगवान के चिंतन में स्थिर रहता है, उस अवस्था को, उस आध्यात्मिक आसक्ति को और उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट। इष्टे गाढ़ तृष्णा, इष्टे अर्थात परमेश्वर जिनका पूजा करते हो, जिनको जो आपके स्वामी है इष्ट देव। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण, गाढ़ तृष्णा भगवान के प्रति डीप अटैचमेंट, वो स्वरूप लक्षण। एंड इष्टे आविष्टता एतत्स्थ लक्षण, अविष्टता का अर्थ होता है हमेशा उनके विचारों में स्थिर रहना, एतत्स्थ लक्षण है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ रागात्मिका भक्ति। तो राग जिसका जो आत्मा अर्थात उसके जीवन का जो सार वो कृष्ण के प्रति इंटेंस अटैचमेंट के रूप में, राग के रूप में प्रकट होता है, भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से वो स्थिर रहता है, इस प्रकार की जो भक्ति होती है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। दिस इज रागात्मिका भक्ति। ओके, रागमय भक्ति है रागात्मिका नाम, तहां सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। दिस इज वन मोर श्लोक फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। इसमें कहा है कि रागमय भक्ति रहे रागात्मिका नाम, जो डीप अटैचमेंट या भगवान के प्रति तीव्र अनुराग से जन्म लेती है या उससे बनी हुई, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और इस प्रकार की भक्ति करने वाला जो होता है, तहां सुनी, उसको सुन करके, जैसे समझ लो कि आपने नंद यशोदा की कृष्ण लीला को इसमें सुन करके कहा सुनी लुब्ध हो कौन भाग्यवान। लुब्ध होता है कि लुब्ध लोभ बढ़ता है उस व्यक्ति के प्रति, उस प्रेम के प्रति, कौन भाग्यवान। ऐसा जो भाग्यवान व्यक्ति होता है, लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति, ऐसे लोभ से ब्रजवासी के भाव को जो अनुगत करता है, उनको शरण, उसको उनको शरणागत करता है, उनको फॉलो करता है, शास्त्र युक्ति ना ही माने, उसको उसको शास्त्र का कोई इंजंक्शन या शास्त्र का रीजनिंग की आवश्यकता नहीं है, उसको शास्त्र युक्ति ना ही माने, रागानुगत प्रकृति, वो रागानुगत भक्ति माना जाता है, स्पॉन्टेनियस लव। तो दैट इज रागात्मिका, ये साध्य भक्ति परफेक्शन स्टेज में रागात्मिका, एंड रागानुगत इज अ प्रैक्टिस स्टेज में। सो दीज आर मेंशन हियर। राग आल्सो मींस कलर। कलर जैसे अगर आपने लाल कलर के चश्मे पहने हैं तो आपको जहां कहीं भी आप सब देखोगे सब कुछ लाल कलर का ही दिखेगा। इसी तरह से One who is an extremely intense attachment, who has, he sees the object of his obsession everywhere all the time. जिस वस्तु के प्रति उसका तीव्र आकर्षण होता है किसी व्यक्ति का, वो हर एक वस्तु उसी दृष्टिकोण से देखता है, उसी चीज से देखता है, उसी के अनुलक्ष्य में देखता है वो हर एक वस्तु। लेकिन संसार में जो पैशन बोलते हैं ना, पैशन है, जो पैशन होता है संसार में, या फिर बहुत तीव्र आकर्षण, पैशन, वो वास्तव में इतना मजबूत नहीं होता जितना आध्यात्मिक जीवन का होता है। वो एक प्रतिबिंबित होता है और बहुत ही कमजोर होता है, और वो एक प्रकार से देखा जाए तो भोग त्याग से जुड़ा हुआ होता है, चपल अशुक, आज एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का जो राग होता है, असली राग जो होता है, उसका उसका मूल जो पिलर है, जो मूल आधार है, वो क्या होता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पैशनेट ऑब्सेशन, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र कामना, तीव्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। तो पैशनेट सर्व कृष्ण कंज्यूम्स द डिवोटीज कॉन्शियसनेस। कृष्ण की सेवा करने का जो पैशन या उनकी प्रसन्न करने का जो तीव्र आवेग जो होता है सेवा का, वो भक्त की चेतना को यहां तक ले जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी वस्तु के विषय में कुछ सोच नहीं सकता। वो केवल कृष्ण की ही सेवा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकता। सो रूप गोस्वामी रागात्मिका भक्ति को इस तरह से बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर समथिंग व्हाइल कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन थॉट्स ऑफ इट, हमेशा उनके चिंतन में रहकर के उनके लिए किया जाए कार्य, उनको प्रेम, उनके उनके प्रति प्रेम के कारण, दैट इज रागात्मिका। सो एक्चुअली जब किसी भक्त में भगवान के प्रति थोड़ा अनुराग या आकर्षण बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से उस आकर्षण या प्रेम का जो एक्सप्रेशन होता है, या जिसको प्रदर्शित करना बोलते हैं, वो प्रदर्शित होता है सेवा के माध्यम से, जिसके लिए आप चैंटिंग के टाइम पे भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आप उनको सेवा दीजिए, भगवान को आप कहते हैं सेवा दीजिए, तो वो एक्सट्रीम डिजायर जो हो जाती है, इंटेंस डिजायर टू प्लीज कृष्णा, तो इस प्रकार का जो इंटेंस एब्जॉर्प्शन भगवान को पसंद करने का, वो केवल वृंदावन में या मायापुर या जगन्नाथपुरी या द्वारका धाम में आपको प्राप्त होता है। तो रागात्मिका के विषय में हम पहले एक बार समझ लेते हैं जो कि रागात्मिका कैसे होते हैं। डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जिसको बोलते हैं वो रागात्मिका, उसके बाद फिर हम रागानुका को समझेंगे। सो या फर्दर दो प्रकार की रागानुका रागात्मिका भक्ति होती है, दो प्रकार की, एक होता है काम रूप रागात्मिका, दूसरा होता है संबंध रूप रागात्मिका। काम रूप उसको स्पेशल कैटेगरी बताया गया है, काम रूप का अर्थ होता है कि माधुर्य रस के अंतर्गत कृष्ण को संतोष देने का तीव्र इच्छा, और बाकी के जो तीन संबंध और है जैसे दास्य वात्सल्य और सख्य, यानी दास्य सख्य और वात्सल्य, ये तीन संबंध जो है ये संबंध रूप रागात्मिका माना जाता है। अब कोई सोच सकेगा कि इसका क्या कारण, दो भाग क्यों बनाए हैं, तो रूप गोस्वामी ने इसलिए इस चीज को अलग किया है क्योंकि जो माधुर्य रस है वो चारों के चारों रस में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो प्री एमिनेंट है, प्री एमिनेंट पोजिशन, सबसे मूल वो ही है, सबसे उत्तम वही माना जाता है। अब ये रागात्मिका जो भक्ति होती है उसके विषय में, रागात्मिका जो आकर्षण है भगवान के प्रति, उसके विषय में रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक रेफरेंस में दिया हुआ है।
प्रभु जी, I'm extremely sorry to interrupt in between.
No, you are welcome to interrupt because I.
Prabhu ji, just a bit confusion was there, so just I would like to clear.
Before you continue, एक बताना चाहता हूँ भक्ति की। देखिए, मैं आप लोग को निराकार रूप में बता रहा हूँ सब, आपको कहीं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए अगर आप हाथ, if you want heavy question, कुछ पूछना है, so you have to stop me.
प्रभु जी, एक्चुअली इन दिस नेक्टर ऑफ डिवोशन बाय जो हमारे पास है श्रील प्रभुपाद की, उसमें दिस सेकंड पैराग्राफ, इफ प्रभु जी कैन जस्ट पुट इट फॉर यू, सेकंड पैराग्राफ इट्स मतलब जो आप अभी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, जो डिवोशनल सर्विस वाइल कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स इन इट विथ इंटेंस डिजायर ऑफ लव, this is mentioned as raga nuga bhakti prabhu in the very second paragraph.
Yes, because this both the subject matters, both the subject both the chapters are raga nuga only, but when you understand raga nuga first you must understand what ragatmika is.
Okay,
so when and you understand ragatmika then it is easier to understand Raganuga.
Okay, so the category, matlab the divisions of this, just now you told about Ragatmika, ek kama roop aur ek sambandh roop, wo Ragatmika ke liye jo bola wo isme bhi lik, I mean Raganuga mein bhi wo hi likha hai, jaise sensual attraction and the other is called relationship. So ye pehle aap Ragatmika bata rahe hai na,
Ragatmika aur Raganuga dono mein ye similar, ye same hi rahega.
Okay,
लेकिन एक अनुगा है और एक आत्मिका,
ठीक है।
अनुगा मीन्स वो फॉलो करते हैं और आत्मिका मीन्स वो लीड करते हैं, आई मीन दे आर डूइंग देयर ओन, और मोस्टली जैसे हम पंच ये शास्त्र प्रभुपाद के ग्रंथों को आगे देखना, आप प्रभुपाद बताते हैं कि इस संसार में रागात्मिका भक्ति करने वाले ऑलमोस्ट नन है, ये तो इटर्नल पोजीशन है ब्रजवासियों की, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो केवल रागानों का भक्ति ही श्रेष्ठ है क्योंकि हम उसी आधार पर चलते हैं, हमारे लिए वही रागानुगा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है रागानुगा भक्ति फॉलो करना। बट रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को इस प्रकार से बता रहे हैं कि रागात्मिका और रागानुगा ये दो प्रकार दो कैटेगरी होती है, और उसमें रागात्मिका को फॉलो करते हैं रागानुगा। अगर जब तक हम रागात्मिका के विषय में चर्चा नहीं करेंगे तो रागानुगा भक्त किसको फॉलो करेंगे? तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि रागानुगा भक्त किसको फॉलो करता है, सो जो जिसको फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं भक्त, देयर वी अंडरस्टैंड।
हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ माता जी,
ये हिंदी की जो बुक है प्रभु जी उसमें रागात्मिका का कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो हम अगर सिर्फ आप समझाओगे उसी के अनुसार समझना है।
हाँ, मैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर है व्रजवासियों के रागात्मिक, है ना, फर्स्ट लाइन में श्री कृष्ण के साथ व्रजवासियों के रागात्मक स्वाभाविक व्यवहार को रागानुगा कहते हैं। वे रागात्मक जो उनका स्वाभाविक व्यवहार है उसको फॉलो करना उसको रागानुगा कहते हैं।
ये शायद पुराना वर्जन हो, मेरे पास जो अभी मैं मंदिर से लाई उसमें ये लाइन ही नहीं है प्रभु जी।
मे बी इट इज बेटर टू गो फॉर इंग्लिश वर्जन, वो प्रभुपाद जी का डायरेक्ट वर्जन है। बट रागानुगा भक्ति अनुगा का अर्थ होता है फॉलो करना, और रागात्मिका का अर्थ होता है जो डायरेक्ट कृष्ण भक्ति में स्पॉन्टेनियसली खुद जुड़े हुए भगवान के साथ। वो लोग किसी का अनुगमन नहीं करते, वो डायरेक्ट अपनी ही भक्ति से कृष्ण के साथ जुड़े होते हैं। और ये रागानुगा भक्त होते हैं वो दासानुदास सेवा करते हैं, अर्थात वो डायरेक्ट कृष्ण को अपना पुत्र मानने से भी इस मोर ऑन, जैसे यशोदा माता जिस भाव से कृष्ण का सेवा करते वात्सल्य रस से फॉर एग्जांपल, वो पहले देखते हैं कि यशोदा माता कैसे करते हैं, उस हिसाब से मैं करूंगा। क्योंकि यशोदा माता से कृष्ण प्रसन्न हुए तो वही उनके कदमों पे मैं चलूंगी या चलूंगा, और फिर कृष्ण मुझसे प्रसन्न होंगे। वो डायरेक्ट सेपरेटली यशोदा माता का स्थान नहीं लेना चाहते, वो यशोदा माता ही सेवा करेंगे, लेकिन उनकी उनको असिस्ट करूंगा या तो फिर उनके कदमों पे चल करके उनकी जो नीति नियम है, जैसे रूप गोस्वामी है, कोई भक्त रूप गोस्वामी को फॉलो करता है रूप मंजरी को, तो उनके वो जो जैसे कार्य करते उसी कार्य को उसमें मन को लगाते हैं। That is, उनके सामने एक आदर्श व्यक्ति होता है जिनको देख करके वो अपनी भक्ति को दिशा देते हैं। That is रागानुगा भक्ति, अनुगा फॉलो करना।
तो यशोदा माता वो रागात्मिका हुआ और जो गोपियां होती वो रागानुगा भक्ति।
वृंदावन के सारे भक्त मोस्टली खास करके गोपियां, नंदा, यशोदा और सखागण जो है वो सभी रागात्मिका भक्त है। और जो मंजरियां होती है या फिर जो भौम लीला में जब प्रकट होती, चैतन्य लीला में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रामानंद राय, फिर स्वरूप दामोदर, ये सारे जो भक्त है ये रागानुगा भक्त है। अर्थात ये भक्त जो है वो सिद्ध साधन अवस्था में है। So my point is very clear. Again, I repeat the same point again. कि रागात्मिका भक्ति वो डायरेक्ट कृष्ण को कृष्ण को केंद्र में रखकर उनकी सेवा की जाती है, और रागानुगा भक्ति उन ऐसे जो भक्त होते हैं उनके आदर्श को सीख करके उनके कदमों पे चल के उनके द्वारा बताए गए गाइडेंस या मार्गदर्शन या वो जैसे जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते उस उदाहरण को ले करके फिर वो भगवान की सेवा करते हैं। दैट इज अनुगा, जैसे हम बोलते हैं रूपानुगा, प्रभुपादानुगा, तो उस तरह से ये है रागानुगा। इसलिए रागानुगा भक्ति वी कैन से कृष्ण ब्रजवासी भक्त सारे रागानुगा भक्त है ऐसा वी कैन से, बट बहुत स्पष्ट रूप से ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक हमने आपको बताया, ये भी तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना चैतन्य चरितामृत का, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि रागात्मिका और रागानुगा दो प्रकार है भक्ति के, और जिसमें रागात्मिका भक्ति को जो अनुसरण करता है वो है राग अनुगभक्त। इज दैट क्लियर? नॉट येट। वो अभी अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी?
यस प्रभु जी।
यस, और कोई प्रश्न किसी को रागा और अनुगा और रागात्मिका को लेकर के?
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अपने गुरु महाराज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो रागानुगा में आते हैं कि रागात्मिका? हमारे लिए तो वो रागात्मिका हम कंसीडर कर सकते हैं ना, बट वो खुद क्या है? वो खुद रागानुगा है कि रागात्मिका है?
गुरु के आध्यात्मिक स्वरूप को समझना गुरु की कृपा से ही संभव होता है, और जनरली सारे भक्त जो हम देखते हैं वो सभी अनुगा है, रूप रागानुगा, क्योंकि वो लोग साधन, अभी उनका साधन देह में है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, वो अभी यहाँ पर मनुष्य शरीर में है, वो अपने सिद्ध शरीर में नहीं है, तो मनुष्य शरीर में है, और वो अपने जो गुरुजन है जैसे प्रभुपाद जी है उन सबको फॉलो करते हुए वो सेवा कर रहे, तो इसलिए यहाँ पर हम जो कुछ देखते हैं वो केवल रागानुगा भक्ति होती है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा रागात्मिका भक्ति केवल और केवल जो भगवान के ब्रजवासी पार्षद लोग है, नित्य सिद्ध लोग, उनमें ये पाई जाती है।
तो सिद्ध शरीर जिनके पास होता है उनके पास रागात्मक भक्ति होती है सब?
सिद्ध शरीर वाला भी रागानुगा हो सकता है, लेकिन रागात्मिका जैसा समझ लो, ये मान के चल सकते हो आप कि यशोदा माता का स्थान हम में से कोई नहीं ले सकता, हम कितने भी अच्छे भक्त बन जाए, यशोदा माता हम में से कोई यशोदा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यशोदा माता का स्थान स्थिर है, वो शाश्वत है, वो हमेशा यशोदा ही रहेंगे और वही कृष्ण के माता रहेंगे, ये फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई यशोदा का स्थान नहीं ले सकता क्योंकि वो भगवान के सनातन साथी सनातन पार्षद है, लेकिन हम लोग उनकी भक्ति से सीख लेकर के, उनके प्रेम से सीख लेकर के, उनकी भावनाओं को, उनके प्रेम को शास्त्रों के माध्यम से या अपनी भक्ति के माध्यम से समझ करके उनके अनुगत हम बन सकते हैं, अनुगामी बन सकते हैं, अर्थात यशोदा माता का भक्ति सर्वश्रेष्ठ एपिटोम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य मूर्ति, लेकिन अगर समझ लो कि कृष्ण के पड़ोसी है कोई, सुबल की माता या फिर मधुमंगल की माता, इनको भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भक्ति है, वात्सल्य प्रेम है, लेकिन वो यशोदा तो कभी बन ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि यशोदा कृष्ण की सेवा कैसे कर रहे हैं, कृष्ण यशोदा से क्यों इतने प्रसन्न है, तो वो सब चीज को देख करके वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल का विग्रह रख करके उनकी सेवा करेंगे उसी भाव से, उसी तरह से, या फिर वही उसी तरह से वो कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से वहां पर सेवा करेंगे, बट उन लोग वो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि एक दिन ऐसा आएगा कृष्ण यशोदा को गुड बाय बोल देंगे और फिर मुझे यशोदा बना देंगे, ये भौतिक जगत की भावना है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई नहीं सोचता, तो इसलिए जो अनुकरण कर, जो अनुसरण करता है भगवान के उत्तम भक्तों का, उसको रागा अनुग, अनुगा का अर्थ होता है फॉलो करने वाला, तो उसको रागा अनुगा कहते हैं, और जो रागात्मिका है जो अनुकरण, उनको किसी के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान के सनातन पार्षद है। ये थोड़ा आसान हो रहा है समझने का, अभी भी मुश्किल पड़ रहा है?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, समझ में
आया। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण ही है और सनातन गोस्वामी रूपक गोस्वामी दे आर सर्विंग चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली, तो इज इट नॉट, आर दे नॉट रागात्मिका और आर दे रागानुगा चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज दे आर सर्विंग
चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट राधा कृष्ण है, और
रूप गोस्वामी और सनातन सनातन रागात्मिका।
हाँ, लेकिन रूप गोस्वामी जब वो अपने सिद्ध शरीर में रूपमंजरी है, वो रूपमंजरी के रूप में जब वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो दैट इज रागात्मिका भक्ति।
अच्छा, अदरवाइज इट इज रागन होगा।
अदरवाइज इट इज रागन होगा।
सो प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन लिंक टू दिस। जैसे प्रभु जी ने कहा कि वो रागानुगा है एंड वी फॉलो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, सो वी आर कॉल्ड रूपानुगास और वी आर ऑल्सो कॉल्ड रागानुगास।
वेल, वी कैन बी कॉल्ड रागानुगा अगर हम रूप गोस्वामी को फुल्ली फॉलो करते हैं। अगेन आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, अनुगा का अर्थ होता है फॉलो करने वाला। अभी आप ये अनुगा शब्द का उपयोग आप किसी को भी कर सकते हो, आप यू नो मोदी अनुगा भी बन सकते हो। अनुगा का मीन्स अनुगा का अर्थ होता है फॉलो करने वाला। लेकिन राग मार्ग से जो फॉलो करता है भक्ति के मार्ग में, वो राग अनुगा माना जाता है। अभी रागानुगा में रूपानुगा मीन्स वो रूप गोस्वामी का फॉलोअर है, सनातन अनुगा तो सनातन का फॉलोअर है, हमारे लिए कहा जाता है प्रभुपाद अनुगा तो हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर है। तो बोथ आर सेपरेट, प्रभुपाद अनुगा मीन्स फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद एंड रागानुगा मीन्स जो रागात्मिक भक्त है उनके चरणों में फॉलो करने वाला भक्त, चाहे वो प्रभुपाद का हो, रूप गोस्वामी का हो, रघुनाथ दास गोस्वामी के हो, हनुमान जी का हो, कोई भी हो।
ओके ब्रो,
या सो शैल वी कंटिन्यू मोर फर्दर। आई नो ये थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग है बट दिस इज सब सिलेबस।
हरे कृष्ण, क्या क्वेश्चन है?
यस,
इन बोथ रागात्मिका एंड रागानुगा दोनों में दास्य भाव जो वो रहता है।
Yes. जैसे हमने बताया कि एक होता है काम रूप, दूसरा होता है संबंध रूप। तो काम रूप जो है रागात्मिका या रागानुगा भक्ति, वो ओनली एंड ओनली फॉर माधुर्य रस, और संबंध रूप जो है वो है दास्य सख्य वात्सल्य, उस रस के अंदर आता है।
ओके, सो आई मीन रागानुगा में जैसे फॉलो रागात्मिका भक्त को, दे आर बेसिकली वृंदावन वासिस, ब्रज वासिस, सो दैट इज दास आल्सो इन रागात्मिका मेमिका, सॉरी, दे आल्सो दे हैव दिस मूड ऑफ सर्वटूरशिप, ऑल्दो दे वो कॉन्जुगल मूड में होते हैं, पैरेंटल मूड में होते हैं, फिर दास्य मूड में रहते
हैं। या बट दे आर संबंध रूप other than conjugal, they are all sambandha roop.
Okay. Sambandha roop.
Yeah, sambandha roop means और बाकी के तीन जो रस है वो संबंध रूप कैटेगरी में आते हैं, और पहला जो है जो सबसे उत्तम है वो काम रूप अर्थात माधुर्य रस, उसके अंतर्गत
conjugal
रस।
और जैसे हम नौ स्टेजेस है भक्ति के, तो रागानुगा भक्ति कम्स एट भाव स्टेज,
वो आएगा अभी हमारे क्वालिफिकेशन ऑफ रागानुगा भक्त, वो फर्दर जो हम आगे बढ़ेंगे उसमें क्वालिफिकेशन आएगा कौन कर सकता है ये भक्ति।
ओके,
या दैट वी डिस्कस। ओके, सो श्रीमद् भागवतम का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको रूप गोस्वामी ने कोट किया है, गोप्यकामात् भयात् कंसो द्वेषात्, गोप्यकामात् भयात् कंसो द्वेषात् छैद्या दयो नृपा संबंधात् विष्णय स्नेहात् द्वयाम् भक्त्या वयम् विभो। तो ये, और उसके पहले भी था एक श्लोक, कामा द्वेषा दया यथा भक्ति भक्ति स्वरे मन आवेश तद अंगमित्वा भवस तद गतिम गता। इसका अर्थ ऐसा है कि ये राजा युधिष्ठिर नारद मुनि ने कहा है ये श्लोक, गोपियों ने अपने काम से लस्ट डिजायर से कंस भय से शिशुपाल और अन्य सब कुछ राजाए ईर्ष्या से द्वेष से यदु कुल के लोग कृष्ण के साथ अपने पारिवारिक संबंध से आप पांच पांडवा कृष्ण के प्रति स्नेह से अत्यंत स्नेह से और हम अर्थात नारद मुनि जैसे हम लोग साधारण भक्त वो हम अलग अलग इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग रीत से भगवान को प्रेम करते हैं, हमारी भक्ति प्रदर्शित करते हैं और हमने कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। सो दिस इज द यू नो स्पेशल श्लोका जिसमें अलग अलग चीज बताई गई है। सो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस भक्ति जो होती है स्पॉन्टेनियस राग भक्ति वो कृष्ण में मन को स्थिर करने का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, बेस्ट पद्धति मानी जाती है। साधन भक्ति का जो मूल उद्देश्य क्या था, कृष्ण में मन को स्थिर करना, और ये रागानुग भक्ति जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसमें स्थिर होता है मन। कंस और शिशुपाल इन लोगों ने भय से और द्वेष से कृष्ण को चिंतन किया था और वो कृष्ण के विषय में इतना सोचने सोचते इतना सोचने लगे थे तो वो इतने शुद्ध हो गए कि उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। और कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि उनको गोपियों के जैसा स्थान प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कंस शिशुपाल को भी गोपी का स्थान दिया। प्रभुपाद जी ने पहले ही हमने वो पहले ही पढ़ लिया था कि शत्रुता के भाव से भगवान को चिंतन करना इसका रिकमेंडेशन नहीं हुआ है। जैसे वेन था राजा वेन, वो भगवान को द्वेष करता था वो निरंतर, लेकिन कंस शिशुपाल की तरह वो हमेशा उनके विचारों में मग्न नहीं रहता था, इसलिए उसको नरक में फेंका गया। सो नारद उसका ये द्वेष या भय इसको नारद जी प्रमोट नहीं कर रहे, उसके विषय उसको नारद जी रेकमेंड नहीं करते, लेकिन भगवान में जो मन को स्थिर किया गया है उनके द्वारा, यद्यपि वो भय या द्वेष से किया, उस बात को उन्होंने यहाँ पर महत्व दिया है। दे जस्ट फोकस ऑन कृष्णा। तो छह इसमें छह चीज बताइए श्लोक में, छह अलग अलग मूल रागात्मिका भक्ति रागात्मिका या कॉन्स्टेंट मेडिटेशन भगवान का, उसमें छह अंग बताए। एक तो लस्ट डिजायर अर्थात काम से गोपी गोपिया कामात भयात कंसा कंस भय से शिशुपाल द्वेष से वृष्णि या यदु लोग संबंध से पांडव स्नेह से और नारद अपने विषय में एज ए ड्यूटी विधि भक्ति से। इस तरह से छह चीज यहाँ पर बताइए, लेकिन ये छह में से केवल दो ही ऐसी है कि जो जेन्युइन रागात्मिक भक्ति के कैटेगरी में आ सकता है, छह में से बाकी नहीं आ सकते। देखो भय और द्वेष ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, चलो प्रभुपाद कहते हैं ये अनुकूल भक्ति में नहीं आता है, इसलिए इसको डिवोशनल सर्विस नहीं कहा जाता है। हमने पहले चर्चा किया था उत्तम भक्ति में इसको स्थान नहीं मिलता, इसको डिवोशनल सर्विस नहीं कहा गया है। फिर नारद के विषय में कहा गया है जो नारद जिस भक्ति से करते थे वो जीव गोस्वामी के अनुसार वो कर्तव्य भाव से कर रहे थे। ऑफ कोर्स अपने विषय में उन्होंने ये कहा है कर्तव्य भाव से, ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट आचार्य, बट वो अपने विषय में उन्होंने ये शब्द बोला है, तो वैधि भक्ति के अंतर्गत आता है, तो इसलिए वो भी रागात्मक भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अफेक्शन जो पांडव के स्नेह, पांडव के हृदय में जो स्नेह था वो शायद रागात्मक का भक्ति में आता है, शायद नहीं आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कभी कभी ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है। जब ये ऐश्वर्य भाव अर्थात सम्मान रिस्पेक्ट की भावना जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो रागात्मक का भक्ति में अवरोध खड़ा कर देता है, और जब वो हट जाता है तब वो फिर रागात्मक का भक्ति बन सकता है। उसी तरह से यदुवंश के जो लोग थे उनके विषय में भी यही इसी तरह से मानना चाहिए कि वो अपने मित्रता से कृष्ण के साथ जुड़े हुए हो, उस समय वो रागात्मक भक्ति की अवस्था को माना जाता है। लेकिन अगर वो उसका उनका आदर या इस तरह से अगर वो जुड़े हैं रिस्पेक्ट से तो वो रागानुगा भक्ति में, रागात्मक भक्ति में नहीं आता। दैट मीन्स दो ही ऐसी भक्ति है, एक तो गोपियों की भक्ति और यदुवंशियों की, ये पांडवों की भक्ति। दिस इज रागात्मक भक्ति में स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वे वेरी क्लियरली। लस्टी डिजायर्स, फोर ऑफ द सिक्स अटैचमेंट, उसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब एक बचा काम रूप जो कि गोपियों का था, और संबंध रूप जो कि वृष्णि वंशियों का था, वही जेन्युइन टाइप में रागात्मक का भक्ति के रूप में रूप गोस्वामी के द्वारा स्वीकार किया गया है। ओनली टू, गोपियों का और वृष्णि वंशियों का, और वो वृष्णि वंशियों का भी तभी जब वो मैत्री भाव से भगवान से जुड़े हो, तो पांडवों का नहीं, क्योंकि पांडवों में भी आदर सत्कार की भावना बताई गई है। सो लाइक दिस, अब एक उसका आंसर ऐसा था कि क्या सबको एक ही प्रकार का गोल मिलता है, एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है? तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा है कि इन सबको, गोपियों को जैसे स्थान मिला वैसे उनको सबको एक जैसा मिला। रूप गोस्वामी इस शंका को हटाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई सूर्य, जैसे हमने ब्रह्म परमात्मा भगवान का एग्जाम्पल गीता में पढ़ा था, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का किरण, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ग्लोब अर्थात गोला, और सूर्य का राजा। लेकिन तीनों के तीनों का मूल स्रोत तो सूर्य ही है। इस तरह से ये जो बाकी के जो चार प्रकार के है वो लोग गोपियों की सेम अवस्था प्राप्त नहीं करते। वो लोग अधिकतर द्वेष और ईर्ष्या वाले जो है असुर लोग, वो लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं और वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। ये समझ लो कोई व्यक्ति किसी राजा के राज्य में जाता है, तो ये जो लोग कंस, शिशुपाल आदि जो लोग थे उनको केवल भगवान के राज्य में स्थान प्राप्त हो सकता है। लेकिन गोपियां जो है वो डायरेक्ट राजा के पास जाती है, कृष्ण के पास, लाइक दैट। सो दिस आर द डिफरेंसेस। जो भगवान के शत्रु लोग होते हैं और जो मायावादी लोग होते हैं, ये जो निराकारवादी होते हैं, उनको एक समान ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त होता है, और जो शुद्ध होते हैं, भक्त होते हैं, उनको शुद्ध भक्तों का स्थान प्राप्त होता है। सो नाउ दो प्रकार है, उसको हम संक्षिप्त में आपके सामने चर्चा करते हैं, कामरूप और संबंध रूप। तो कामरूप, काम का अर्थ होता है, जनरली हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में काम का अर्थ होता है इंद्रियों की जो तृष्णा होती है, प्यास, उसको बुझाना, या उसको उसको लष्ट कहते हैं, या उसको उस कामना, उसे कामना कहते हैं। इंटेंस डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा है इंद्रियों को पूर्ण, इंद्रियों से जुड़ी हुई, उसको काम कहा गया है। काम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक और दूसरा होता है आध्यात्मिक। भौतिक काम जो होता है उसका लक्षण ऐसा होता है कि निजी अपनी खुद की इंद्रियों को संतुष्ट देने की तीव्र इच्छा और आध्यात्मिक काम में कृष्ण को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा, कृष्ण के आध्यात्मिक इंद्रियों को प्रसन्न करने की। तो ये जो काम आध्यात्मिक जीवन में इसको जो काम यहाँ पर बताया, वो कृष्ण की सेवा करने की सब तीव्र इच्छा काम कहा गया है इन पर्टिकुलर कैपेसिटी। तो जब भक्त की इच्छा या लोभ, कृष्ण की सेवा करने का जो लोभ है, वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो वो इंटेंस होता जाता है। सेवा करने का जो इच्छा, वो इंटेंस होता जाता है, तीव्र होता जाता है। दैट इज कंसिडर्ड काम, काम रूप। मन भौतिक काम और आध्यात्मिक काम में बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण और गोपियों के बीच में जो आलिंगन, नृत्य इत्यादि जब हम देखते हैं, तो कई बार बद्ध जीवात्माओं के मन में उसको समझने में कठिनाई होती है। सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही होता है, ये तो बिल्कुल, तो कैसा, ये स्वाभाविक है, डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हमारी वृत्ति कैसी है कि हम हर एक जो कुछ भी देखते हैं, वो हम हमारे अपने अनुभव के आधार पर ही देखते हैं। हम जनरली हमारे एक्सपीरियंस जो है, अपना निजी एक्सपीरियंस, उसी के आधार पर हम हर एक चीज को देखना चाहते हैं। जैसे हम ऐसा मानते हैं कि एक जवान लड़का या जवान लड़की जब एक दूसरे को आलिंगन देते हैं या नृत्य करते हैं या उस प्रकार का कोई भी कॉन्जुगल अफेयर्स होता है, तो उसको हम मानते हैं कि ये तो काम है, मैनिफेस्टेशन ऑफ लस्ट। क्यों? क्योंकि मैं भी बचपन से बड़ा हुआ तो मैं तो मेरे शरीर में भी यही विकार आते हैं और मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी इस प्रकार का आकर्षण होता है। ये हमारा अपना अनुभव है, हम ऐसा मानते हैं। और इसलिए जब कभी भी कृष्ण और गोपियों की लीलाओं की चर्चा होती है और जब हम उसको सुनते हैं, तो हम उसको भौतिक काम के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। फिर भक्तों की सहायता से, प्रपद की सहायता से हम यहाँ तक तो आ जाते हैं, इस अवस्था तक, कि कृष्ण का और गोपियों के बीच का जो व्यवहार है वो हमारे पुरुष और स्त्री, प्रेमला प्रेमली, लैला मजनू जैसा नहीं है, और वो शुद्ध अवस्था पर है, क्योंकि वो स्थिर है, आध्यात्मिक इन गुणों से पर है। लेकिन हम यहां तक तो समझ जाते कि वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। लेकिन वो क्यों आध्यात्मिक है और वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है, यहां तक कई बार हम नहीं समझ सकते। हम थियोरिटिकली मान लेते हैं ऐसा कि हाँ ठीक है, चलो हमने मान लिया कि वो भौतिक नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक किस तरह से उत्कृष्ट है वो हम कई बार नहीं समझ सकते। लेकिन अगर किसी भक्त को थोड़ा जेन्युइन रियलाइजेशन, थोड़ा सा जेन्युइन आत्म साक्षात्कार, थोड़ा सूझबूझ आता है एक भक्त को, तो वो भगवान की इस लीलाओं को शुद्ध प्रेम का विनिमय के रूप में देख सकते, शुद्ध प्रेम का विनिमय। वो जानता है वो भक्त कि गोपियों का हृदय में जो प्रेम है, उनका प्रेरक बल है ये लीलाओं के प्रति, इंटरनल मोटिवेशन, वो भौतिक प्रेमला प्रेमली जो होते हैं उससे कंप्लीट विपरीत है। कार्य एक जैसे ही दिखते हैं, वही आलिंगन करना, चुंबन देना, ये सब एकदम कार्य एक जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? एक होता है लोहे जैसा भौतिक और आध्यात्मिक को होता है सोने जैसा। और इसका मूल उद्देश्य है, भौतिक काम में निजी इच्छा होती है पूरी करने की, सेल्फिश, अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, अपनी इच्छा इंद्रियों को संतुष्ट करने की भावना होती है। और जो प्रेम होता है, जो निश्चल प्रेम, निष्पाप प्रेम या फिर गोपियों का प्रेम, इसमें केवल और केवल कृष्ण को आनंद देना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित, बिल्कुल निस्वार्थ, उसमें निजी संतोष की कोई कामना नहीं है। तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा प्रेम आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। तो देखने में कभी कभी ऐसा होता है कि गोपियां भी कभी कभी ऐसा वर्तन करते थे वृंदावन में कि जैसे मान लो तो स्वार्थी हो कृष्ण के लिए, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाता है तो उनका भी उद्देश्य केवल यही है कि कृष्ण प्रसन्न किस तरह से हो, और वो ये भी जानते हैं कृष्ण तभी प्रसन्न रह सकते हैं जब वो अपने भक्तों को या गोपियों को प्रसन्न देखना चाहे देखे। तो दिस इज द ओनली रीजन वो लोग अपनी हॉकमिनेस का सोचते हैं, अन्यथा उनको अपनी अपना खुद का कोई लेना देना नहीं। वो अपने आप को अशुल्क दासिका, जो आप गोपी गीत पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, व्हाट इज दैट, अशुल्क दासिका। तो आप में से कई भक्तों का तो कंठस्थ भी होगा गोपी गीत। एनीवे, सो अशुल्क दासिका अपने आपको कहते हैं। अशुल्क दासिका का अर्थ क्या होता है कि हम आप सबकी, हम आपकी दासियां हैं। अशुल्क अर्थात हमें सामने कुछ नहीं चाहिए, अशुल्क निस्वार्थ केवल आपकी सेवा, आपको प्रसन्न करना, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। तो आध्यात्मिक जो संबंध होता है उसमें भौतिक काम या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता है। कभी कभी रूप गोस्वामी या फिर कुछ शास्त्र में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये कालष्टी है गोपियों की, जो भाव है काम रूप, ये शब्द का प्रयोग किया गया है, वैसे आध्यात्मिक काम है। लेकिन ये केवल इसलिए इस शब्द का उपयोग किया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को हम इस चीज को समझ सके, क्योंकि हम इसी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ विद्वान लोग प्रभुपाद कहते हैं कि काम वासना के रूप में कृष्ण की इच्छाओं या गोपियों की भक्ति को काम वासना के रूप में वो लोग बताते हैं भौतिक जगत की, लेकिन ये तो केवल समझने के लिए, दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ गोपीज। कृष्ण को संतोष देने के लिए गोपियां इतनी ज्यादा श्रेष्ठ या बहुत ज्यादा तीव्र आवेग है उनके अंदर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो हमारी सोचने की क्षमता से बाहर है। लेकिन हम केवल इतना समझ सकते हैं, जो हमारे अपने अनुभव में केवल यही हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति काम से प्रभावित होता है तो वो किस तरह से आवेग में होता है, वो थोड़ा सा अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं, हल्का सा, कि गोपियों को भगवान को प्रसन्न करने की इंटेंसिटी कितनी अधिक है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो केवल अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है, इसको हम अनुभव कर सकते, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसके लिए इसको कभी कभी काम माना जाए, काम बोला जाता है, अर्थात हमारे भौतिक जगत में जैसा होता है उस प्रकार का गोपियों और कृष्ण के बीच का संबंध नहीं होता है। वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, कार्य एक देखने में एक जैसे ही लगेंगे सामने, लेकिन हृदय के अंदर केवल निस्वार्थ प्रेम होता है और कुछ नहीं। जैसे क्यों, इसका एविडेंस क्या है कि ये सब प्रकार की काम वासना से ऊपर है गोपियों का भक्ति, क्योंकि शास्त्र में श्लोक भी है, चैतन्य महाप्रभु खुद कहा है कि रम्या काचिद उपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता। उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना गोपियों की है, गोपियों के द्वारा की गई है। रम्या काचिद उपासना, ऐसी उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उद्धव भगवान का महान भक्त है, उसको लैला मजनू प्रेमला प्रेमली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उत्तम मुक्तात्मा है उद्धव, फिर भी उन्होंने गोपियों के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, वो चुस्त नियमों का, सन्यास नियमों का पालन करते थे, फिर भी उन्होंने वो निरंतर गोपियों के चिंतन में स्थिर रहते थे। तो इसका अर्थ क्या है कि गोपियों में भौतिक काम वासना का अंश भी नहीं है, और इसलिए इतने महान महान जो मुक्तात्मा होते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, ये लोग उनकी स्तुति करते हैं महाप्रभु। तो इसलिए, और दूसरे का एग्जाम्पल आप, ये भी मिलता है कि कुब्जा, कुब्जा में भी मिक्स था गोपियों की जैसा, वो भी कृष्ण से आकर्षित हुई थी, लेकिन उसके हृदय में एक कमी थी, क्या? उसको अपनी काम वासना, जो सेल्फिश अपना निजी स्वार्थ भी था उसके, क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि मैं कृष्ण को भोग करूंगी, हालांकि कृष्ण परमेश्वर है, वही एकमात्र भोक्ता है, हम दास है, हम केवल उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कुब्जा ने ऐसा सोचा कि मैं भी, मेरा भी इसमें सुख, मुझे भी सुख मिलेगा इंद्रिय भोग से। तो कृष्णा बहुत कृपालु है, तो कृष्णा ने कुब्जा को मना नहीं किया, लेकिन कृष्णा ने उसका हृदय शुद्ध कर दिया तुरंत केवल एक स्पर्श करने मात्र से। तो फिर भी कुब्जा को भगवान की गोपियों की तरह कामरूप कैटेगरी में नहीं डाला गया है, क्योंकि वो भक्ति में स्वार्थ जुड़ गया था, तो ये कामरूप कैटेगरी या उत्तम भक्ति में नहीं जाता है। तो लाइक दिस, दिस आर वन इज अ कामरूप कैटेगरी।
हरे कृष्णा प्रभु, ये पुतना वध है तो उसमें पुतना को गोलोक वृंदावन में जगह मिली थी कि नहीं मिली थी?
पुतना को, हाँ पुतना को दिया ना गोलोक वृंदावन में स्थान।
तो प्रभु वो भी वैर भावी था ना उनका?
हाँ, लेकिन भगवान ने उसका एक गुण ये देखा था कि उसने एक बार ऐसा सोचा था, एक बार सही प्रेम से, कि मैं अगर ऐसा बेटा मुझे प्राप्त हो तो मैं उसको मैं अपना दूध पिलाऊं अपने बच्चे की तरह, एक बार ऐसा सोचा था उन्होंने बस, पूतना ने वामन अवतार के समय पे। तो इसलिए भगवान ने उसकी वो भक्ति, उसकी जो आकर्षण भगवान के प्रति है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो उसकी जो द्वेष वाली, जो भगवान का यही तो उद्देश्य है सारग्राही, भगवान क्या करते हैं उसका जो अच्छा वस्तु होता है वो ले लेते हैं और उसकी जो खराब वस्तु उसको फेंक देते हैं, तो इसी तरह से भगवान भी हो करते हैं।
ओके प्रभु जी, यानी ये पैराग्राफ में मैंने पढ़ा कि कंस और शिशुपाल दोनों को वहाँ जगह वृंदावन गोलोक धाम में जगह नहीं मिली।
उन्होंने कभी भी मिली अनुकूल भाव से कृष्ण का सेवा कभी नहीं किया था, इसलिए
प्रभु जी।
और कोई प्रश्न? ओके, सो कामरूप के विषय में हमने अभी चर्चा किया, और दूसरा है संबंध रूप, अन्य तीन जो है तो वो तो बड़ा आसान है समझने का, बट स्टिल वी जस्ट समराइज। कामरूप और संबंध रूप में सब एक जैसा ही सेवा होता है, लेकिन जैसे हमने पहले बताया वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में सेवा होता है काम रूप में, और संबंध रूप में दास्य सख्य वात्सल्य के रिलेशन या संबंध के अंतर्गत तीव्र सेवा का आकर्षण, उसको संबंध रूप कहा गया है। यहाँ पर एक चीज श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, उसको हम एक बार आपके सामने बताते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा कहे है कि काम रूप और संबंध रूप वृंदावन के शाश्वत जो ब्रजवासी लोग हैं उनके लिए ये वर्णन आता है, जो सिद्ध रागानुग भक्ति को, रागात्मक भक्ति को फॉलो करते हैं। ये 15 और 16वां अध्याय का प्राइमरी सब्जेक्ट वो है रागानुगा साधन भक्ति, और इसलिए इसका रागात्मिका प्रेम भक्ति से कोई लेना देना नहीं है ये दो चैप्टर से। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये दोनों चैप्टर में रागात्मिका का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है डिटेल में, रागात्मिका प्रेम उसके ऊपर नहीं बताया, तो इसलिए एक साधन भक्ति है रागानुगा साधन भक्ति, दैट इज प्रैक्टिस मीन्स साधन, और परफेक्शन मीन्स सिद्ध अवस्था। So, इसलिए रूप गोस्वामी इस रागात्मिका भक्ति का जो जो विषय है उसको बहुत ही ब्रीफली बताया, बहुत ही ब्रीफली, उन्होंने कुछ नहीं प्रभुपाद ने तो इतना भी डिटेल नहीं किया है, आप देखा बुक में प्रभुपाद ने और सच डिटेल, लेकिन रघुबो स्वामी के ग्रंथ में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखा है इसके अंदर, क्या, इन द स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की इस अवस्था में जब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन किया जाता है साधन भक्ति का, उस अवस्था उस समय देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ डिस्कसिंग दिस लव, इस प्रेम की या रागानुगा भक्ति या रागात्मक भक्ति जो है उसके विषय में अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आपकी भक्ति एडवांस होती जाएगी ये अपने आप आपके सामने प्रकट होता है। दिस नॉट द सब्जेक्ट मैटर टू डिस्कस, सो प्रॉपर डिडंट डिस्कस दिस मच बिकॉज वी आर एट द साधक अवस्था, हम लोग सिद्ध अवस्था में नहीं है, तो हम कितना भी रागात्मक भक्ति के विषय में या प्रेम भक्ति के विषय में सुनेंगे वो हमारे ऊपर से चला जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका डिस्कशन किया जाए, क्यों, समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा, तो क्या समझ पाएंगे हम केवल यही समझ पाएंगे कि साधन भक्ति कैसे किया जाए, रागानुगा साधन भक्ति। सो नाउ वी टॉक अबाउट रागानुगा साधन भक्ति, वो पर्टिकुलर किसी एक रागात्मिका भक्त के भावनाओं के अनुसरण में की गई जो तीव्र सेवा है भगवान की, उसको रागानुगा भक्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन के विषय में बताया जाता है कि कौन इसका सेवा कर सकता है, उसको इस में चर्चा करने से पहले ये बताया गया है, भक्ति रसामृत का श्लोक है, तत्त्व भावादि माधुर्य सुते धीरज अपेक्षते नात्र नास्त्र शास्त्रम न युक्तिम च तत् लोभोत्पत्ति लक्षणम। जब कोई वृंदावन के भक्तों की लीलाओं को, जो कोई एडवांस डिवोटी या उन्नत भक्त ब्रजवासियों की लीलाओं को सुनता है, उनके दास सख्य वात्सल्य माधुर्य उनके रसों को सुनता है, तो वो उस पर्टिकुलर रस से आकर्षित होता है, जैसे किसी को वात्सल्य आकर्षण होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि हर एक जो प्राउड स्त्री होती है स्वाभाविक रूप से ऐसा सोचती है कि कृष्ण हमारा बच्चा हो, वो ही हमारा बच्चा है। फिर जवान लड़कियां होती है वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानती है, फिर कुछ लोग कृष्ण को मित्र मानते हैं। तो ये सब जो देखने को हमें मिलता है वो केवल सुपरफिशियल होता है, अधिकतर केस में सुपरफिशियल होता है, ये वास्तविकता नहीं होता है। वास्तविकता तो तब प्रकट होता है जब वो अनर्थ निवृत्ति से मुक्त हो जाता है, तब जाके वो इस चीज को समझ सकता है। लेकिन अभी केवल ऐसा मानते हैं कि मुझे भी यही भक्ति अच्छी लगती है, मुझे भी कृष्ण बाल स्वरूप में ही अच्छे लगते हैं। So this is because of you are in that particular body, therefore you consider like this. But this bhakti is completely subject matter of the spiritual soul. It has nothing to do with the body. So इसलिए ये superficial होता है। तो वो इस तरह से आकर्षित हो जाता है वो भक्त, और फिर वो भक्त शुरू करता है अपनी भक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। और इस अवस्था में जब वो पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में अर्थात फॉलो करता है रागात्मिका भक्ति करने वाले भक्त की भक्ति की विधि विधानों को, वो शास्त्र के आधार पर या लॉजिक या आर्गुमेंट्स के ऊपर फिर उसको कोई आधार नहीं रखता है। तो रागानुगा भक्ति का जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है लोभ अर्थात ग्रीड, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में कृष्ण की सेवा करने का लोभ, स्ट्रॉन्ग लोभ। और ये लोभ के केवल और केवल ये लोभ से ही जिसका डायरेक्शन होता है, जिसका मार्गदर्शन होता है या जो स्फुरित होता है भक्ति, उसको रागानुगा भक्ति, और जिसमें शास्त्र इंजंक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। उसमें शास्त्र ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा है कि 4:30 बजे उठ के मंगला आरती करो इसलिए मैं मंगला आरती करता हूँ, उसको इसकी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली उसको खुद से आकर्षण है भगवान के विग्रहों की सेवा करना, तो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती वो। गुरु ने बोला इसलिए कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये अवस्था तब प्राप्त होती है, धीरे 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 इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, जब सब प्रकार के मटेरियल कंटामिनेशन या भौतिक जो क्लेश या भौतिक दोष है उससे पूर्ण रूप से वो मुक्त हो जाता है, या फिर अनर्थ निवृत्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है कोई व्यक्ति, अनर्थ निवृत्ति समाप्त कर देता है, तब जाके इस अवस्था तक वो पहुंच सकता है। तो यही चीज श्री प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में लिखा है, दिस रागानुगा ड्यूटी डू नॉट फॉलो द रेगुलर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी ऑन सर्विस स्ट्रिक्टली। ये रागानुगा भक्त नीति नियम का चुस्त पालन करते हुए दिखने को नहीं मिलते कभी कभी, लेकिन वो नंद यशोदा जैसे रागात्मिक भक्त से आकर्षित होते हैं और उनके कदम में चलते हैं। अनदर पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्या कि यद्यपि रागानुगा भक्त नीति नियमों से पर होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग नीति नियम का पालन ना करे तो चलता है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि उनको अपनी भक्ति के लिए बाह्य इंस्पिरेशन या प्रेरणा की शास्त्र के आधार की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने हिसाब से स्वाभाविक रूप से भगवान से आकर्षित होते हैं। ये प्रेरणा, ये अंतर केवल इतना ही है कि वो जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो स्वाभाविक होती है, और विधि साधन भक्ति में वो जो प्रेरणा होती है वो गुरु और शास्त्र के आदेश का पालन करने के कारण होती है, तो विधि नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, केवल प्रेम है उसका मूल जो आधार है उसकी सेवा करने का, वो है प्रेम भगवान के प्रति। सो जैसे हमने पहले आपको बताया कि जो लोभ है, ईगरनेस, सिंपली ईगरनेस जो, वो वास्तव में इसका क्वालिफिकेशन है। एक पर्टिकुलर रागात्मिक भक्त को फॉलो करने का जो लोभ है दैट इज रिक्वायर्ड, और ये तब हो सकता है जब अनर्थ निवृत्ति कोई प्राप्त कर सकता है। ब्रजवासी भक्त जो है उनकी सेवा करने के लिए सब प्रकार के भौतिक जो कंटेमिनेशन या दोष है उससे मुक्त होना आवश्यक है। रागानुगा इस विदिन द रिल्म ऑफ साधना, दैट आल्सो वी कैन जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट बिकॉज दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जब किसी भक्त की अनर्थ निवृत्ति होती है तब वो रागानुगा भक्ति करने के लिए क्वालिफाई होता है। अनर्थ निवृत्ति साधन भक्ति के स्तर के अंदर आती है, और ये अनर्थ निवृत्ति जब तक आप प्रेम अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक थोड़ा अंश अनर्थ का रहता है, इसलिए वो साधन भक्ति के अंतर्गत रहता है, और ये विशेष करके ये अनर्थ निवृत्ति और रागानुगा साधन के। और भाव और प्रेम की अवस्था जब आती है तब जाके अनर्थ नष्ट होते हैं, बाकी जैसे हम अनर्थ से नष्ट होते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आता है निष्ठा, स्थिर हो जाना। तो रूप गोस्वामी और प्रभुपाद दोनों ही इसके ऊपर कहते हैं कि उसके ऊपर कोई प्रकाश उन्होंने नहीं डाला है, लेकिन ये चैप्टर साधन भक्ति के तरंग में आता है, सो इसलिए वी कैन अंडरस्टैंड कि ये साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। रागानुगा साधन भक्ति, इट इज नॉट भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब इसका प्रैक्टिस, इसका अभ्यास कैसे किया जाए उसको हम संक्षिप्त में जब तक समय होता है अब चर्चा करते हैं। इसके पहले किसी को कोई प्रश्न है?
अनर्थ निवृत्ति वाला पॉइंट जरा क्लियर करेंगे आप, कि आपने ये बोला कि अनर्थ निवृत्ति कम स्टैंडर्ड साधन है, वो पॉइंट जरा क्लियर कर देंगे?
अनर्थ निवृत्ति जब तक हमारे हृदय में अनर्थ किस प्रकार से होता है, भौतिक इच्छा है, फिर अपराध, इच्छा द्वेष, ये सब अनर्थ के कैटेगरीज में आते हैं। जब तक ये सब रहता है हमारे हृदय में थोड़ा बहुत भी, तब तक हम भाव भक्ति या प्रेम भक्ति तक स्थिर नहीं हो पाते, इसलिए अनर्थ निवृत्ति जब चली जाती तब निष्ठा, फिर रुचि और फिर आसक्ति, ये तीन स्टेज आते हैं। ये निष्ठा, रुचि और आसक्ति जो है उस समय धीरे धीरे ये राग भक्ति का शुरुआत हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है। जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं और अपराध युक्त भावनाएं हैं तब तक हम राग भक्ति को समझ नहीं सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। हो सकता है उसका 1% या शैडो शुरू हुआ हो हमारी भक्ति में, लेकिन वास्तविक राग भक्ति जो है वो तो बाद में प्रकट होती है, अनर्थ निवृत्ति के बाद। इसलिए कोई प्री मेच्योरली अगर ऐसा मानने लगे कि हम राग भक्ति में है और कृष्ण के विग्रह को देख करके ऐसा मानने लगे कृष्ण तो मेरा सखा है, लेकिन उसके हृदय में अभी भौतिक इच्छाएं है, अपराध युक्त भावना है, ईर्ष्या द्वेष वगैरह है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है नहीं कि वो कृष्ण को इस तरह से सखा मान करके चले। क्यों? क्योंकि वो सुपरफिशियल माना जाता है। वो उसको अभी क्या करना चाहिए, विधि भक्ति का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करके, गुरु और श्री प्रभुपाद जी ने जो कहा है उस विधियों को चुस्त रूप से पालन करेंगे, तब जाके पहले हृदय की शुद्धि होगी। हृदय की शुद्धि होगी तो मिरर के ऊपर जो धूल जमी है वो धूल हटेगी, और धूल हटेगी फिर पता पड़ेगा कि वास्तव में कृष्ण के साथ तुम्हारा संबंध क्या है। इसलिए प्री मैच्योरली आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है।
प्रभु जैसे आपने बताया ये पॉइंट के अनर्थ निवृत्ति और रागानुगा भक्ति में जो कनेक्शन, तो मतलब इज इट फेयर टू अंडरस्टैंड कि मतलब रागानुगा, जब तक कोई व्यक्ति रागानुगा स्टेज पे नहीं आता तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश इज नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल क्योंकि कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज वेरी मर्सीफुल, और इसलिए कोई भक्त शुद्ध रूप से अभी स्थिर नहीं भी हुआ है तो उसको क्या करेंगे, उसको दूसरा अवसर देंगे, किसी भक्त के घर में जन्म दे सकते हैं, या तो फिर उसको सीधा भगवान के धाम ग्रेस मार्क्स दे करके, ग्रेस अनर्थ निवृत्ति वाला पोर्शन उसके लाइफ में से हटा देते हैं। वो दैट ओनली कृष्णा कैन डू एंड गुरु कैन डू, वो हटा देते हैं तो सीधा फिर आगे वाली आसक्ति और भाव भक्ति तक पहुंच सकता है डायरेक्ट। वो स्पेशल मर्सी में ऐसा कृष्ण करते हैं।
राइट, जैसे जैसे मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया था कि जो व्यक्ति जीवन के अंत तक संकीर्तन करता है, पुस्तक वितरण करता है, उसको भगवान अगर वो भगवान कृष्ण को भूल भी गया तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उनको याद दिलाएंगे, उनके साथ लेके जाएंगे। सो समथिंग लाइक दिस,
उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सर्व्ड ऑल द टाइम कृष्णा। और एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि कृष्ण के साथ लीला करने का सरला होता है कि हम किसी के घर पे मक्खन चोरी करने जाएंगे तभी कृष्ण की लीला होती है। कृष्ण का लीला का अर्थ होता है इफ यू वांट टू प्लीज कृष्ण दैट डजंट रिक्वायर ऑल द टाइम दैट यू नो यू डू सेवा दैट वे। कृष्ण का मन की इच्छा को समझना, the idea is to please Krishna and Krishna is non different from Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu Krishna ek hi hai. To unki unko santosh karne ke, unko pasand karne ki jo tivra bhavna hai, that is you know lobha. Wo uska lakshan hai raga bhakti ka. Aur unki ichha kya hai? Chaitanya Mahaprabhu ka ek ichha ye bhi hai, prithvi ta achyuta nagar adhigram sarat prachar karo. To prachar ki jo tivra ichha hai, that also comes kama rupa. It also comes spontaneous devotional service. But uske liye again, that devotee must have overcome all the anarthas. Sab prakar ke anarthas se mukt hona chahiye. Otherwise, wo keval vidhi sadhana bhakti mein rehta hai.
प्रभु सो लास्ट क्वेश्चन मतलब इन कनेक्शन विद दिस, मतलब जैसे कोई कोई भक्त मतलब जेन्युइनली प्रयास कर रहा है अनर्थ निवृत्त अनर्थ को बाहर निकालने का, बट फॉर सम रीजन हृदय की दुर्बलता से या कभी कभी एक्सीडेंटली ये हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो मतलब इन दैट कनेक्शन आई वॉज थिंकिंग कि जैसे अनर्थ निवृत्ति सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एटलीस्ट फॉर मी इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. तो मतलब उसको भगवान की और वैष्णव की सेवा कर रहे हैं तो व्हाट इज द होप.
या देयर इज अ होप बिकॉज अब हमने एक बार भगवद गीता के समय में आपसे शायद आपसे चर्चा किया था इस विषय में जो अलग अलग प्रकार की जो उत्साहमयी फिर घन तरला फिर ये अलग अलग बताए थे हमने अनर्थ निवृत्ति को विषय में डिफरेंट कैटेगरीज. तो कुछ में क्या होता है कि कभी कभी फ्लक्चुएशन आता है अनर्थ में, कभी कभी हम बहुत सारा नियम बनाते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते. ऐसे कुछ पांच या छह प्रकार के हमने आपके साथ चर्चा किया था उस समय घन तरला और अन्य कुछ है और जिसके हमने चर्चा की थी.
Yes, sir.
तो दैट कम्स इन द प्रोसेस. सो अगर हमें उस अवस्था तक पहुंचना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए. बिकॉज जो प्रयास करता है उसको उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ सकता है. उसको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है ये सब प्राप्त करना, मेरे लाइफ में तो मैं कभी अनर्थ निवृत्ति कर ही नहीं सकता. उसको ऐसा लगेगा ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है. उसकी इच्छा को देखा जाता है, उसका इंटेंशन क्या है ये देखा जाता है, और फिर वो मेहनत करता है. हो सकता है कि जीवन काल समाप्त होने तक वो सफलता तक पहुंचाना हो, लेकिन उसने जो मार्ग चुना था उस जिस उद्देश्य को उसने स्थिर किया था अपनी लाइफ में, जो इंटेंशन के साथ वो आगे बढ़ रहा था, वो इंटेंशन देखा जाता है उसको नेक्स्ट बॉडी देने के लिए, ना कि उसकी उस पर्टिकुलर समय की अचीवमेंट को.
थैंक यू वेरी मच.
सो मोर क्वेश्चंस. Okay, so because this is a completely new subject matter, practice of spontaneous devotional service, ये 16वां अध्याय है और उसके बाद फिर हम आपके साथ आगे के 17, 18, 19 ये तीन और है. तो is it okay? We can do it on the coming Sunday because it's already 10:03. Ramakantu, is it fine? We can stop now.
Okay, Baba. Yes, it is.
किसी को कोई प्रश्न है?
जस्ट
प्रभु एक और
बोलिए
प्लीज. गो अहेड प्रभु.
नो आई वाज नॉट सेइंग एनीथिंग.
या सो प्रभु मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं सोच रहा था कि जैसे प्रकार के भक्त श्रद्धा के बेसिस पे मध्यम उत्तम कनिष्ठ और नाउ वी हैव डिफरेंट वैधि भक्ति उसमें रागानुगा और फिर भाव और प्रेम. तो मतलब इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दीज टू के मतलब ये भक्त ये भक्ति के स्टेज पे है ऐसा कुछ? इज देयर एनी कनेक्शन?
यस देयर आर कनेक्शन. कुछ जगह पर ऐसा कहा है जिसको आप सुनकर थोड़ा परेशान हो जाओगे. कुछ जगह पर ऐसा कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति भाव भक्ति तक स्थिर नहीं होता या जब तक किसी की अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक वो मध्यम अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता, तब तक कनिष्ठ अधिकारी ही माना जाता है. ऐसा कुछ जगह पर ऐसा मेंशन किया गया है बट श्री प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही क्लियर रूप से बताया है कि अगर आप ये चार चीज जो हमने बताया था पहले आपको उसको अगर जो फॉलो करता है तो वो कनिष्ठ और मध्यम के ट्रांजिट अवस्था में भी हो सकता है. तो proportionately it can be going for further for मध्यम अधिकारी devotion service.
Okay, sir. Thank you.
Okay.
हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु जी ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है, तो क्या पूछ सकती हूँ मैं? प्रभु जी ये जो समाधि वगैरह बनाते हैं तो जो मेन सोल है वो तो चला गया तो बाकी तो बॉडी ही होती है और बॉडी से जब समाधि बना